ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यम् ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णववांश्च श्रीरूपं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गो कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये कल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare Rama, Rama Rama.
जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावनवा राधा तू बड़ भागिनी कौन तप नात है सोते रो आधे जय राधा माधव जय राधा माधव कुंज बिहारी
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 गोपी जन वल्लभ यशोदानंदन ब्रज जन रंजन
यशोदानंदन
ब्रज जन रंजन
तेरा वन चारे
जय
Hare Rama, Hare क्रोध्य भुज द्वयम् हरि हरि
अश्रु निर्जर चये सिंचन्त मूरवीतलम् गायन्तं निज पार्षदे परिवृतम् श्रीगौरचन्द्रं नमः श्रीगौरचन्द्रं नमः श्रीगौरचन्द्रं नमः वंशी विभूषितकरा नवनी
यः स्वा
श्रुति सार में कम अध्यात्म दीप मति ते तिष्ठां तमोन्धम संसारिनां करुणया हपुरा
सब भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से प्रस्थापित 7 दिवसीय इस भागवत सत्र, इस भागवत सप्ताह में हार्दिक स्वागत करते हैं। प्रारंभ करने से पहले हमारे आराध्य भगवान श्री श्री राधा गिरधारी जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूं। उन्हीं के साथ साथ इस जगत के नाथ जगन्नाथ जी, बलदेव जी और सुभद्रा जी के चरणों में शत शत वंदन करता हूं। तत्पश्चात कलयुग पावन अवतार करुणा वरुणालय, जो साक्षात भगवान श्री कृष्ण कलयुग के जीव पर कृपा करने के लिए आज से 523 वर्ष पूर्व चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए, ऐसे चैतन्य महाप्रभु के चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूं। तत्पश्चात श्रीमद् भागवत जिन जिन आचार्यों ने समझा है और समझ पर श्रीमद् भागवत को हम जैसे लोगों को समझाने के लिए उन पर भाष्य लिखा है, टीका लिखी है, कमेंट्री लिखी है, ऐसे भागवत के प्रथम प्रमुख टीकाकार श्रीपाद श्रीधर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूं, जिन्होंने श्रीमद् भागवत को बहुत मधुर रूप में हम सबके सामने प्रस्तुत किया है। उन्हीं के साथ साथ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जीव गोस्वामी और भी अन्य आचार्य, वीर राघव आचार्य, वंशीधर जी, विजय ध्वज जी और हमारे प्रिय गोस्वामी गिरधर लाल, जिन्होंने बाल प्रबोधिनी नामक टीका लिखी हुई है, इसे आचार्यों के चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूं और आशीर्वाद मांग रहा हूं कि कृपया करके हमें शक्ति दीजिए ताकि आपके विचारों को पढ़कर समझकर यहां पर इस भागवत को प्रस्तुत कर सकूं। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को न केवल भारत अभितु समग्र विश्व भर में प्रचार करने वाले अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपालु ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूं, जिनके तात्पर्य को पढ़कर, जिनकी कृपा के आश्रित रहकर हम भक्त बने हैं और उनकी कृपा से भागवत को समझ रहे हैं, ऐसे प्रभुपाद जी के चरणों में वंदन। तत्पश्चात हमारे परम गुरु, परम पूजनीय, प्रातः स्मरणीय श्री राधा गोविंद गोस्वामी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूं। उनकी शारीरिक स्थिति ठीक नहीं है, परंतु आज इस व्यास आसन के ऊपर बैठकर भगवान से भीख मांगता हूं, कृपया करके हमारे गुरु महाराज को जल्द से जल्द ठीक कर दीजिए और जल्दी से जल्दी उनका स्वास्थ्य ठीक हो जाए और हम सबको भागवत की कथा सुना सके। ये जो भागवत कथा मैं करने जा रहा हूं, श्री राधा गिरधारी के चरणों में प्रार्थना कर रहा हूं, इस भागवत सुनने का फल हमारे गुरु महाराज जी को प्राप्त हो ताकि उनकी तबीयत जल्द से जल्द ठीक हो जाए और हमारे सामने उपस्थित हो। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी के चरणों में वंदन करके संसार के समस्त वैष्णव भगवान के परम भक्त के चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूं। और उसी के साथ यहां पर पधारे हुए धर्म प्रेमी, भागवत प्रेमी वैष्णव भक्तों के चरणों में शत शत वंदन करता हूं। आप सब लोग हमें आशीर्वाद दीजिए, आपके आशीर्वाद से ही हम यहां पर कुछ शब्द उच्चारण करेंगे। और इसी के साथ साथ नारी गांव वाले धनजी भाई को भूरी भूरी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने बहुत परिश्रम करके यह आयोजन किया है और इस आयोजन का लाभ लिया है। भगवान उनको शक्ति प्रदान करे, भक्ति प्रदान करे। आज का कार्यक्रम हम प्रारंभ कर रहे हैं, परंतु कई लोग मन में सोच रहे होंगे या बोल भी चुके होंगे कि आज तो इतना भारी दिन है, आज इतना बड़ा ग्रहण है, फिर भी आज भागवत कथा की शुरुआत क्यों हुई? इतना भारी दिन, इतना ग्रहण के दिन में भागवत कथा प्रारंभ करना, ये तो अपशुकुन है। कई लोग ऐसा कहते हैं। श्रीमद् भागवत सप्ताह का प्रारंभ हम ग्रहण से करेंगे। ये ग्रहण क्या है, ये ग्रहण क्यों होता है और ग्रहण के समय पर क्या करना चाहिए? भक्तों, ये ग्रहण कब से प्रारंभ हुआ? श्रीमद् भागवतम में यह कथा भागवत के अष्टम स्कंद के छठे अध्याय में दी गई है। पहले यह ग्रहण नहीं होता था। श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को अष्टम स्कंद में समुद्र मंथन की कथा सुनाते हैं। भागवत के 10 विषय वस्तु अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थानम पोषणम उतय मन्वंतरेशानु कथा निरोधो मुक्ति आश्रय। मन्वंतर की कथा सुनाते हुए चाक्षुत मन्वंतर की कथा सुनाते हैं। और इस मन्वंतर में एक समय की बात, दुर्वासा मुनि जिसका नाम सब लोग जानते हैं, क्रोध होने में और श्राप देने में बहुत प्रवर है, बहुत तुरंत क्रोधित हो जाते हैं। दुर्वासा जी वैकुंठ में भगवान श्री विष्णु को मिलने के लिए गए। वैकुंठ में गए, भगवान का दर्शन किया। भगवान का दर्शन करते ही भगवान ने अपने गले में जो वैजंती माला धारण की हुई थी, अलग अलग अन्य अन्य फूलों की माला, भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान श्री विष्णु ने वैजंती माला दुर्वासा मुनि के गले में रख दी। भगवान की तदीय वस्तु प्रसाद ग्रहण करके दुर्वासा मुनि प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर वैकुंठ से वापस आ रहे थे। उसी समय 33 करोड़ देवी देवताओं का राजा इंद्र, जो स्वर्ग पर शासन करता है, ऐसा इंद्र ऐरावत हाथी के ऊपर सवार होकर कहीं जा रहा था। यहां से इंद्र का जाना और वैकुंठ से दुर्वासा जी का आना, इंद्र और दुर्वासी दोनों, दुर्वासा मुनि दोनों आमने सामने मिले। मिलने पर इंद्र ने ऐरावत के ऊपर बैठे बैठे दुर्वासा जी को प्रणाम किया। साधु संत भक्तों का यह स्वभाव है, प्रणाम यदि कोई भक्तों को कर देता है तो वे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। इंद्र ने जब दुर्वासा ऋषि को प्रणाम किया, दुर्वासा ऋषि इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए कि भगवान श्री विष्णु ने जो अपनी माला उनके गले में डाली थी, वह माला अपने गले से निकालकर इंद्र के गले में रख दी, प्रसन्न हो गए। इंद्र के गले में जैसे ही वह फूलों की माला आई, धन और मद से प्रभावित होने वाला इंद्र ने सोचा, मैं तो स्वर्ग का राजा हूं, मेरे पास धन की कोई कमी नहीं है, मैं तो डायमंड हीरा और सोने का माला पहनता हूं, ये फूलों का माला क्या काम का। इसे आजकल के नेता लोग माला पहनते ही निकाल देते हैं। दुर्वासा मुनि ने जैसे ही वह माला इंद्र के गले में डाली, इंद्र ने तुरंत वह माला बाहर निकाल दी। देखिए राहु केतु और ये सूर्य ग्रहण का प्लेटफॉर्म यहां से बनता है, इसका प्रारंभ यहां से हुआ, केवल ये माला की वजह से। इसलिए मैं कहता हूं कि जब भगवान का प्रसाद और भगवान की माला गले में आए तो तुरंत नहीं निकालनी चाहिए, आधा एक घंटा तो रखनी चाहिए, क्योंकि प्रवचन के बाद कई लोग यहां पर आएंगे, माला पहनाई जाएंगी तो तुरंत निकाल देंगे। हमारे गुरु महाराज को तो जब भगवान श्री कृष्ण की माला पहनाते हैं, एक बार वो कह रहे थे मैं माला पहनकर सो जाता हूं, भले चदर बिगड़े या कुछ भी हो, भगवान की पवित्र माला है। परंतु इंद्र इस बात को नहीं जाना और तुरंत वह माला अपने सिर से निकाल दिया और निकालकर जिस हाथी पर वह बैठा था हाथी के ऊपर वह माला पहना दिया। अब हाथी क्या जाने माला क्या होता है, प्रसाद क्या होता है। हाथी ने तो अपने सिर से निकालकर उस अपने पैर के नीचे उस माला को कुचड़ दिया और दुर्वासा ऋषि यह दृश्य देख रहे थे। दुर्वासा ऋषि के देखते देखते एक तो भगवान का प्रसाद, ऊपर से दुर्वासा ऋषि का प्रसाद, ये दोनों का आशीर्वाद और आशीर्वाद रूपी वह माला हाथी के नीचे जब कुचलते हुए देखा, दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए। क्रोधित होकर इंद्र को श्राप दे दिया। इंद्र धन और ऐश्वर्य के मोह में मद में तूने भगवान का और एक वैष्णव का अपराध किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारी सारी शक्ति नष्ट हो जाए, श्रीहीन हो जाओ। आप लोग जानते ही होंगे, नहीं जानते तो जान लीजिए, स्वर्ग में देवता और असुरों का बहुत युद्ध होता है और असुर लोग यही ताक में रहते हैं कि कब देवताओं की शक्ति कम हो और हम युद्ध करें और स्वर्ग को जीत ले। यहां पर दुर्वासा ऋषि ने जैसे ही श्राप दिया कि तुम्हारी सारी शक्ति हीन हो जाए, असुरों को पता चल गया, तुरंत असुर लोग पूरी सेना लेकर स्वर्ग में गए, स्वर्ग पर आक्रमण किए, स्वर्ग खाली करा दिए और देव असुरों का राजा बलि इंद्र के आसन के ऊपर बैठ गया और इंद्र का स्वर्ग खाली हो गया। अब क्या करें, इंद्र और 33 करोड़ देवी देवता जिसको हम पूजते हैं मानते हैं, ये सब लोग बेघर हो गए, कहां रहे कहां जाए। इस संसार में जब जगत का सहारा नहीं मिलता है तब जगदीश्वर का सहारा लेते हैं। जगदीश भगवान विष्णु के शरण में गए। भागवत में तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं इंद्र समेत 33 करोड़ देवी देवता ब्रह्मा जी के पास गए। देखिए ब्रह्मा जी सभी देवताओं में ज्येष्ठ है, श्रेष्ठ है। ब्रह्मा जी ने कहा देखो और कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम हो तो मैं सॉल्व कर सकता हूं, परंतु इतनी बड़ी प्रॉब्लम को मैं भी सॉल्व नहीं कर सकता हूं। आपका दुख एकमात्र इस संसार के ईश्वर जगत के स्वामी भगवान विष्णु ही दूर कर सकते हैं। इसलिए एक काम करो, हम सब भगवान विष्णु के पास जाते हैं। इंद्र समेत ब्रह्मा जी सभी देवी देवता भगवान विष्णु को मिलने के लिए क्षीर सागर के तट पर गए। क्षीर सागर के तट पे जाकर बहुत सुंदर पुरुष सूक्त नामक स्तुति की और पुरुष सूक्त नामक स्तुति करने के बाद भगवान श्री विष्णु ने ब्रह्मा जी को दर्शन दिया और सब देवता नहीं देख सके, केवल ब्रह्मा जी ही इसे देख सके। सह शर्वेण तम तनुम, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं केवल ब्रह्मा जी भी नहीं, साथ में शर्वेण शिव जी भी थे। केवल शिव और ब्रह्मा भगवान विष्णु की छवि को देख सके, बहुत सुंदर उनकी छवि थी। शंख चक्र गदा पद्म पीतांबर कौस्तुभ मणि धारण किए हुए थे। और उनका प्रकाश कितना था, कहते हैं सहस्त्रा को दयद्युति, सहस्त्र अर्क द्युति, कहते हैं सहस्त्र सहस्त्र सूर्य के समान भगवान विष्णु चमक रहे थे। और भगवान श्री विष्णु की चमक से सभी देवताओं की आंख चौंधियाई गई, बंद हो गई, केवल शिवजी और ब्रह्मा जी भगवान को देखे। और भगवान ने कहा कि ब्रह्मा जी मैं जानता हूं आप लोग यहां पर क्यों आए हो, आप यहां पर क्यों आए हो मैं जानता हूं, ये इंद्र जो है बारंबार अपराध करते रहता है, परंतु फिर भी क्योंकि आप मेरी शरण में आए हो इसलिए मैं तुम्हें दुखों से मुक्त करूंगा और स्वर्ग वापस दिलाऊंगा, परंतु आपको एक काम करना होगा। क्या काम करना है? कहा कि इंद्र को कहो कि असुरों के साथ मैत्री करें। और बिल्कुल ब्रह्मा जी लाइव टेलीकास्ट इंद्र को कर रहे थे। इंद्र ने जैसे ही सुना, देवी देवताओं ने जैसे ही सुना कि असुरों के साथ मैत्री करनी है, तो भगवान को कहने लगे हम असुरों के साथ मैत्री कैसे करेंगे, क्योंकि उसके साथ मैत्री करेंगे तो वे तो हमें खा जाएंगे। भगवान ने कहा मैत्री का अर्थ नहीं जानते हो, कैसी मैत्री करनी चाहिए भगवान सिखाते हैं। जैसे एक सांप चूहे से मैत्री करता है वैसी मैत्री करनी चाहिए, फिर भी देवता नहीं समझ सके। प्रभु बराबर ठीक से बताओ असुरों के साथ किस प्रकार मैत्री करनी है। भागवत में लिखा है, भगवान समझाते हैं, देखो एक बार एक सांप और चूहा एक ही डिब्बे में बंद हो गए, जो सांप पकड़ने वाले होते हैं, तो सांप पकड़ने वाले ने एक डिब्बे में चूहे को पकड़ कर रखा था और उसी डिब्बे में सांप को डाल दिया। सांप और चूहा दोनों एक डिब्बे में बंद है, सांप चाहे तो तुरंत चूहे को खा सकता है, अपना भोजन बना सकता है, परंतु सांप ने चूहे को नहीं मारा, सांप ने चूहे को उस डिब्बे में पड़े पड़े कहा कि मूषक महाशय आप डरिए मत, मैं आपको खाऊंगा नहीं, मैं आपको मारूंगा नहीं, मैं आपसे मैत्री कर रहा हूं, आज से हम दोनों मित्र हैं, आप डरो मत। चूहे की जान में जान आई, चलो आज बच गए। कहा कि मूषक महाशय जी अब तो हम दोनों बंधे हैं, परंतु एक प्लान मैं आपको दे सकता हूं, बताइए। आपके दांत तो बहुत अच्छे हैं, तो ये घास की ये वास की जो डिब्बा बना है अपने दांत से काट डालो, और आप काट दोगे बिल बना दो, आप भी बाहर निकल जाओ और मैं भी बाहर निकल जाऊंगा, दोनों बच जाएंगे। चूहे ने कहा ये तो बहुत अच्छा प्लान है। तब चूहे ने धीरे 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 करके उसमें एक बिल बनाया, एक खड्डा बनाया, छिद्र बनाया। सांप ने देखा कि ठीक से छिद्र बन गया है, तब सांप चूहे को कहता है कि मूषक महाशय जी जरा देखने तो ठीक से बन गया है, छोटा तो नहीं है ना। तो मूषक महाशय बेचारे बाजू में आ गए और सांप ने कहा कि चलो मैं देख लेता हूं निकलकर, इस प्रकार से इतना कह के सांप निकल गया, पूरा बाहर निकल गया और अपना मुंह फैलाकर उस बिल के बाहर बैठा है और कहता है मूषक महाशय अब बाहर आ जाओ। चूहा जैसे ही बाहर आया सांप ने गप करके उसे खा लिया, भोजन भी मिल गया और बिल से भी छूट गया, दोनों बात हो गई। भगवान श्री विष्णु अपने भक्तों को देवताओं को समझाते हैं ऐसे मैत्री करनी चाहिए, अपना काम बना लेने पर फिर मैत्री तोड़ देनी है। भगवान भी कभी कभी बहुत बुद्धिमानी की बात करते हैं। देवताओं ने कहा ठीक है चलो मैत्री आपके कहने पर हम मैत्री कर लेंगे, परंतु मैत्री करके क्या करना है? तब भगवान विष्णु कहते हैं आप असुरों के साथ मैत्री करो और मैत्री करके समुद्र मंथन करो, क्योंकि जब तक समुद्र से अमृत नहीं निकलेगा और अमृत का पान हे देवताओं आप नहीं करोगे तब तक आपकी शक्ति बढ़ेगी नहीं। दुर्वासा ऋषि का श्राप है आपकी शक्तिहीन हो जाए तो शक्ति चली गई है, अब वह शक्ति प्राप्त करने के लिए अमृत पीना होगा और अमृत मात्र समुद्र मंथन से निकल सकता है। समुद्र मंथन करो और अकेले समुद्र मंथन हो नहीं सकता है, इसलिए असुरों का साथ लो, बलि महाराज के पास जाना, उससे मैत्री करना और मैत्री करके समुद्र मंथन करना। इंद्र समेत देवी देवताओं ने कहा, प्रभु ठीक है, हम समुद्र मंथन करेंगे, अमृत निकलेगा, परंतु ये असुर हमें नहीं पीने देंगे। बहुत कपटी हैं, बहुत छल करते हैं, लेकर भाग जाएंगे, हम क्या करेंगे। भगवान ने कहा, मेरे पर विश्वास रखो, मैं बैठा हूं, मैं आपको सहाय करूंगा, आप मेरी इच्छा पूर्ण करो। वास्तव में भगवान चाहे तो एक चुटकी में देवताओं की शक्ति बढ़ा सकते थे, परंतु भगवान विष्णु चाहते थे समुद्र मंथन हो, क्योंकि समुद्र मंथन से ही तो भगवान की प्रिया उनकी पत्नी लक्ष्मी जी का प्राकट्य होगा। समुद्र मंथन का प्रस्ताव भगवान ने कहा, भगवान अप्रकट हुए, शिव जी अपने धाम में चले गए, ब्रह्मा जी अपने धाम में, और इंद्र समेत देवी देवतागण बलि महाराज असुरों के राजा के पास आए। असुरों के सामने प्रस्ताव रखे कि हम आपसे मैत्री करना चाहते हैं और मैत्री करके समुद्र मंथन करेंगे और समुद्र से जब अमृत निकलेगा तो आधा आधा बांट लेंगे, पार्टनरशिप कर लेंगे। आज भी संसार में लोग बिजनेस करने के लिए पार्टनरशिप करते हैं, यहां भी पार्टनरशिप हो रही है, 50% आपका 50% हमारा, दोनों आधा आधा मेहनत करेंगे। बलि महाराज को एक प्रस्ताव अच्छा लगा और सारे असुर मन ही मन सोच रहे थे कि इससे मिलकर समुद्र मंथन करेंगे और जब अमृत निकलेगा तो लेकर भाग जाएंगे, इनके पास तो शक्ति है नहीं। और देवता मन में यह सोच रहे थे, समुद्र अमृत निकलेगा तो भगवान हमें पिला देंगे। दोनों मिले और मिलकर समुद्र मंथन करने के लिए सोचे, अब क्या करें, समुद्र मंथन कैसे हो, क्योंकि मंथन करने के लिए मथनी चाहिए। जैसे हम छाछ से, दही से छाछ बनाना चाहते हैं तो उसके लिए मथनी होती है। अब इतने बड़े समुद्र का मंथन करने के लिए मथनी कहां से लाए। तब भगवान ने पहले ही कह के रखा था, मथनी के रूप में मंदार पर्वत को लेकर आना जो 10,000 योजन लंबा और चौड़ा है। सारे देवता और सारे असुर मंदार पर्वत के पास गए और 10,000 योजन लंबा और चौड़ा वो मंदार पर्वत, क्योंकि बहुत उत्साह था। जब बिजनेस शुरू करते हैं तो शुरू शुरू में बहुत उत्साह होता है, बिजनेसमैनों को पता होगा। यद्यपि वो मंदार पर्वत किसी से उठने वाला नहीं था, परंतु जब उत्साह होता है तो नामुमकिन काम भी मुमकिन हो जाता है, उत्साह होता है। ते सभी देवता और सभी असुर मिलकर 10,000 योजन लंबे और चौड़े पहाड़ को, पर्वत को अपने हाथ से उठा लिए और सब लोग अपने कंधे पर रखकर, और कुछ लोग बीच में नीचे चले गए थे, ऐसे उठा रहे थे। सब लोग उस पर्वत को लेकर समुद्र के ओर आ रहे थे। आते 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 अब कितना उठाए भार, धीरे धीरे सब लोग थकने लगे, सबकी शक्ति कम होती गई। परंतु असुर यदि देवताओं को कह दे के हम थक रहे हैं तो वैल्यू डाउन हो जाएगी, नाम क्या रहेगा, कल सुबह पेपर में आ जाएगा कि गए थे बिजनेस करने और असुर लोग थक गए, हमारी प्रेस्टीज क्या रहेगी, हमारी पर्सनालिटी डाउन हो जाएगी, बेचारे बोल नहीं सके। यहां देवता भी थक गए, परंतु यदि एक बार भी बोलते कि हम थक गए तो कल के पेपर में आ जाएगा, देवताओं में कोई शक्ति नहीं है, सबको अपने अपने नाम की पड़ी थी, इसलिए कोई कुछ बोल ही नहीं रहा था और मन ही मन में बेचारा भार ढो रहे थे। परंतु आखिर कब तक भार उठाए, जब कैपेसिटी खत्म हो गई और एक साथ सबके हाथ छूटे और 10,000 योजन का वो पहाड़ सबके ऊपर धड़ाम करके गिरा और किसी का हाथ टूटा, किसी का पांव टूटा, किसी का आधा शरीर, और जो बड़े बड़े देशभक्त नीचे चल रहे थे वे तो पूरा चूर्ण हो गए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, चूर्णिया मांस, जिसे हम चूर्ण खाते हैं, चूर्ण कायम चूर्ण, चूर्ण बन गए सब लोग, पीस गए उस पर्वत के नीचे, मर गए सब। और कुछ लोग हैंडीकेप हो गए थे, ऐसा हाथ लेकर वहां पर्वत के बाजू में दोनों हाथ ऊपर रख करके बैठ गए कि बिजनेस के पहले ही दिन हमारा बिजनेस डूब गया, ये उठ गया पैसा लेकर। ऐसा ही हुआ, पहले ही दिन इतना बड़ा विघ्न आ गया। प्रश्न उठा कि विघ्न क्यों आया, तो भागवत में सुखदेव गोस्वामी एक इशारा करते हैं कि विघ्न इसलिए आया क्योंकि ये लोग ने इतना शुभ कार्य प्रारंभ करने से पहले विघ्नों के हर्ता विघ्न विनाशक नरसिंह देव या गणेश जी की पूजा नहीं की थी। इतना बड़ा काम करने गए परंतु गणेश जी की स्थापना नहीं की, इसलिए विघ्न आ गए। और सब लोग हताश होकर बैठ गए, अब क्या करें, अब छोड़ो धंधा बिजनेस कुछ नहीं करना है। और भगवान तो चाहते थे समुद्र मंथन हो, भगवान ने सोचा यदि ऐसा होगा तो काम चलेगा नहीं। भगवान श्री विष्णु गरुड़ के ऊपर सवार होकर आए, आकर केवल अपनी अमी भरी दृष्टि से उस असुर और देवताओं के सामने देख दिए, अपनी आंखों से देखने मात्र से सभी लोग वैसे बैठे हो गए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जैसे नींद खुलने पर व्यक्ति खड़ा हो जाता है वैसे सब लोग खड़े हो गए। मर गए थे वे भी जीवित हो गए। ये भगवान की दृष्टि का प्रभाव है। भगवान केवल एक छटा कर दे, एक दृष्टि कर दे व्यक्ति के ऊपर, मरा हुआ व्यक्ति भी जीवित हो सकता है, तो दुखी व्यक्ति सुखी क्यों नहीं हो पाएगा। हम दुख के लिए रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, परंतु एक भगवान की दृष्टि पड़ जाए व्यक्ति परम सुखी, परम परम आनंदमय हो सकता है, जीवित हो गए। और भगवान ने सोचा कि अब ये लोग मंदार पर्वत को उठाएंगे नहीं, इसलिए भगवान ने अपने एक हाथ से मंदार पर्वत को रखा गरुड़ जी के ऊपर और सभी देवता और असुरों को कहा कि आप भी इस फ्लाइट पर बैठ जाओ। और गरुड़ जी ने दो पंख फड़फड़ाई, समुद्र के पास पहुंचे और सब लोग वहां पर उतर गए। आप कल्पना करो वो गरुड़ जी कितने बड़े होंगे, जिस गरुड़ जी के ऊपर मंदार पर्वत, सभी असुर और सभी देवता, सब कल्पना से परे है। समुद्र के पास आए, अब सब लोग फिर से उत्साह आ गया सब में, और देवता और दानव ये दोनों मंदार पर्वत को उठाए, उठाकर समुद्र के बीचों बीच लेकर गए और कहा कि बस ये जगह अच्छी है, मंदार पर्वत को रखा। रखते ही वह मंदार पर्वत नीचे डूब गया, क्योंकि नीचे तो कुछ बैलेंस होना चाहिए। मंदार पर्वत डूबा, अब क्या करें। तब भगवान श्री विष्णु ने एक रूप धारण किया, एक अवतार लिया जिसे कच्छप अवतार कहते हैं। और कच्छप अवतार लेकर भगवान विष्णु कच्छप बनकर उस पहाड़ के नीचे गए और धीरे धीरे करके उस पर्वत को ऊपर लेकर आए। जैसे ही पर्वत ऊपर आया तो ये देवता और असुर नाचने लगे, अरे बाप रे बाप, ये तो ऊपर आ गया, ये तो तैर रहा है समुद्र में। ठीक है, पर्वत आ गया, अब मंथन करने के लिए रस्सी चाहिए। तब भगवान विष्णु ने कहा था कि रस्सी आप वासुकी नाग को बुलाना और वासुकी नाग को कहना कि थोड़ा अमृत आपको भी पिलाएंगे, इस लोभ से वे भी आ जाएंगे। ये सब लोग फोन किए वासुकी नाग को कि भाई आप आइए, आपकी रस्सी बनाना है। पहले तो ना बोल दिया, मैं क्यों आऊं भाई, कि रस्सी बनना कौन चाहेगा, क्योंकि उस चट्टानों के साथ वासुकी नाग को घिसा जाएगा, इससे बहुत दर्द होगा। परंतु कहा कि आपको अमृत पिलाएंगे, तो अमृत के लोभ से वासुकी नाग भी आया और आते ही सर 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 बिल्कुल लपेट गया और एक पूंछ का भाग और एक मुख का भाग, दोनों भाग पड़े। तब भगवान श्री विष्णु ने देवताओं को इशारा किया कि आप वासुकी नाग के मुख के बाजू चले जाओ। तो सभी देवता दौड़कर मुख के भाग को पकड़ लिए मंथन करने के लिए, असुर लोग खड़े रह गए और मान करने लगे, हम समुद्र मंथन नहीं करेंगे, आपके साथ बिजनेस हम नहीं करेंगे। क्यों भाई, क्या हुआ, आप इतना अच्छा मुख का भाग पकड़ोगे और हम पीछे का भाग पकड़ेंगे, हम में और आप में क्या अंतर है, जितना आप पढ़े हो उतना हम पढ़े हैं, जितने आप सुंदर हो उतना हम सुंदर है, आप में जितनी शक्ति है उतनी हम में भी शक्ति है, हम में आप में कोई अंतर नहीं, और आप मुख वाला भाग पकड़ो रहो, हम पीछे का भाग पकड़े। कल सुबह पेपर में हेडलाइन में आ जाएगा, असुरों ने पीछे का भाग पकड़ा, इतना गंदा भाग हम नहीं पकड़ने वाले हैं। हम बिजनेस नहीं करेंगे, समुद्र मंथन हम नहीं करेंगे। असुरों के मन में यह था कि देवताओं ने वे भाग पकड़ा है तो वे अच्छा होगा। भगवान ने इशारा कर दिया, ठीक है असुर चाहते हैं मुख का भाग पकड़े तो उसे मुख का भाग दे दो, आप पीछे के भाग पर आ जाओ। ये भगवान की इच्छा थी, क्योंकि जब वासुकी नाग की मंदार पर्वत के साथ रगड़ होगी तो रगड़ होने से उनके मुख से विष निकलेगा, आग निकलेगी, और मुख वाला भाग जो पकड़ेगा वो बिल्कुल तप्त हो जाएगा। भागवत में आगे आएगा कि उसके मुख से इतनी ज्वाला, इतना जहर निकलता था, बलि महाराज इतने सुंदर थे, इतने गौरव वर्ण थे, बेचारे काले हो गए, सब लोग धुएं धुएं और ध्रुमिल हो गए। इसलिए भगवान की ही इच्छा थी कि देवता लोग वो वाला भाग पकड़े। देवता असुर लोग ने मुख वाला भाग, देवता पीछे पूंछ के भाग पर आए और श्री गणेश करके समुद्र मंथन प्रारंभ किया। भगवान ने पहले से समझा कर रखा था कि देखो समुद्र मंथन से बहुत वस्तु निकलेगी, बहुत चीज निकलेगी, परंतु आपको कभी ऐसा नहीं कहना है मुझे दो। ये असुर लोग मांगेंगे और सब कुछ लेकर जाएंगे, परंतु अंपायर के रूप में मैं बैठूंगा वहां पर, बिल्कुल आधा आधा हिस्सा मैं दूंगा, आप डरो मत, परंतु असुर जो मांगेंगे उसे लेने दो। तब ये समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ महामंत्र के साथ, हरे कृष्णा हरे। समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ, बहुत सुंदर समुद्र की आवाज खलखल खलखल बह रहा है, और यहां पर सब लोग परिश्रम में लगे हैं, सब लोग के मन में उत्साह है और समुद्र मंथन कर रहे हैं। प्रारंभ हुआ उत्साह के साथ, बिल्कुल रगड़ा जा रहा है, रगड़ा जा रहा है, और समुद्र बिल्कुल आंदोलित हो रहा है। और समुद्र जब बहुत मंथन किया, बहुत मंथन हुआ, तो उस समुद्र से पहला रत्न निकला, और यह रत्न नहीं, यह तो सबको मारने वाला हलाहल विष निकला। प्रारंभ में ही लॉस, प्रारंभ में ही नुकसान, पहले ही दिन हलाहल विष। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं वह विष खोलने लगा, चारों दिशा में, दसों दिशा में फैलने लगा। और विष कौन सा था, विष की, विष में भी क्वालिटी होती है अलग अलग। ये कालकूट नाम का विष था, ये विष खाने की बात दूर है, इसकी गंध भी यदि किसी को आ जाए व्यक्ति मर सकता है। ऐसा विष समुद्र से निकला और निकलते ही खोलने लगा। ये सारे असुर और देवता भागो भागो करके वहां, सब मंथनी पर्वत और वासुकी नाग ये सब को छोड़कर भागे। भागते भागते भगवान ने कहा शिव जी के पास भागो, क्योंकि ये काम शिव जी का है, मेरा काम मक्खन खाने का है, और ये विष वाला काम उनका है। वहां सब लोग वहां से भागे, और वो विष तो खोल रहा था, सब लोग भागे हैं। और देवताओं ने कहा कि हम 33 करोड़ नहीं, जो बड़े बड़े वरिष्ठ हैं वे शिव जी के पास जाते हैं। ये देवता लोग शिव जी के पास गए, उस समय शिव जी कैलाश में थे, और कैलाश में बैठे हुए शिव जी भगवान का नाम ले रहे थे। उसी समय सभी देवता शिव जी के पास पहुंचे, और पहुंचकर शिव जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं, विनय करते हैं। हमारे भक्तों ने बहुत सुंदर गाया है इसे,
शंभो शरणे पड़ी कष्ट चाप दया करी दर्शन शिवयापो शंभो शरणे पड़ी दया
में प्रार्थना कर रहे हैं, विनय कर रहे हैं, आप हम पर दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए और ये हलाहल विष से आप हमारा उद्धार कीजिए। आप चंद्र धारण कीजिए और कंठ में विष लीजिए। समस्त देवता शिव जी के चरणों में है और उस समय शिव जी पार्वती की परीक्षा ले रहे हैं कि पार्वती देवी देवी संसार के ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति आई है, सब लोग विष से आकुल है और विष के कारण सब लोग मर रहे हैं, बताओ मुझे क्या करना चाहिए। तब जगत जननी माता पार्वती शिव जी से कहती हैं कि पतिदेव, जगत का कल्याण यदि विष पीने में है तो आप प्रेम से विष धारण कर लीजिए। मैं आपको प्रेरित कर रही हूं और कृपया करके जगत का उद्धार कीजिए, विष को धारण कीजिए। भगवान भोलेनाथ शिव जी शंकर, जिसे आशुतोष कहा जाता है, जो कर्पूर गौड़म करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयार विंदे भवम भवानी सहितम नमामि, ऐसे शिव जी चले हैं जहां पर विष निकला था उस स्थान पर आए और शिव जी ने अपने हाथ में सारे विष को धारण किया और अपनी अंजलि से आचार्य गण लिखते हैं शिव जी ने रा बोलकर अपना मुख खोला और शिव जी को अंदर डाल विष को अंदर डाला और विष को अंदर डाल के म बोलकर अपना मुंह बंद कर लिया। नाम प्रभाव जान शिव नी को, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि शिव जी राम नाम का प्रभाव जानते थे, इसलिए भगवान का नाम लेकर शिव जी ने विष पिया परंतु वह विष शिव जी का कुछ नहीं बिगाड़ सका। सुखदेव गोस्वामी लिखते हैं जो विष की गंध से व्यक्ति मर सकता है, शिव जी ने वह विष धारण किया, मरने की बात दूर रही, उनके गले का अलंकार बन गया। उस दिन से शिव जी का नाम ही हो गया नीलकंठ, अलंकृत हो गए। ये भगवान के नाम का प्रभाव है। भगवान का नाम यदि कोई लेता है तो विष भी अमृत हो जाता है। ये तो बहुत वर्षों, बहुत कल्प पहले की बात है। कल ही के दिन आप देखिए मीराबाई नाम की भक्ता मारवाड़ में हो गई। मारने के लिए जहर में विष मिलाया था परंतु मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। गिरधर गोपाल कृष्ण का नाम लेकर मीराबाई ने विष पी लिया परंतु वह विष उनका कुछ नहीं बिगाड़ सका। भगवान के नाम का प्रभाव है। गरल सुधार रिपु करे मिटाई, कहते हैं विष भी अमृत हो जाता है। परंतु यदि कोई व्यक्ति भगवान का नाम नहीं लेता है, भजन नहीं करता है, वह यदि अमृत भी पी लेता है तो वह अमृत भी विष हो जाता है। अंत में यह कथा आएगी, राहु की कथा ही इसमें छिपी हुई है। शिव जी ने विष धारण किया। सुखदेव गोस्वामी इस अध्याय के अंत में कहते हैं कि शिव जी के जब विष पी रहे थे तो उनके हाथों से कुछ विष की बूंद नीचे गिर गई। विष की बूंद नीचे गिरने के कारण वह बूंद बिच्छू ने, सर्पों ने इत्यादि ने ग्रहण की। उनका प्रभाव आज भी है। आज भी सर्प बिच्छू विषधर होते हैं, आज भी उनका प्रभाव। प्रश्न होता है क्या शिव जी ठीक से विष को धारण नहीं कर पाए, अपनी अंजलि ठीक से बंद नहीं कर सके? नहीं, शिवजी जानबूझकर दो तीन बूंद नीचे गिराए ताकि संसार के लोगों को पता चले कि इस विष का प्रभाव कितना है। शिवजी ने विष धारण किया, सब लोग निश्चिंत हुए। शिवजी चले गए कैलाश में और देवी देवता और यहां से असुर लोग फिर से बिजनेस ऑफिस में आ गए। उनके लिए यही ऑफिस है क्योंकि उद्योग करना है, अमृत निकालना है। फिर से समुद्र मंथन प्रारंभ। हरे कृष्णा कृष्णा
हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
वैसे तो यह कथा बहुत बड़ी है। इस समुद्र से 14 रत्न निकले, जैसे एक विष निकला वैसे उच्च सेवा नाम का घोड़ा निकला, एरावत हाथी निकला, कामधेनु गाय निकली, कल्प वृक्ष निकला, चंद्रमा निकला वह शिव जी को दिया गया, कौस्तुभ मणि निकला भगवान ने ले लिया, लक्ष्मी जी निकली, यह भी बहुत बड़ी कथा है। लक्ष्मी जी को कोई नहीं ले पाया। लक्ष्मी जी ने कहा आप लोग मुझे नहीं बांट सकते हो, मैं जिसको चाहूं उसके साथ विवाह करूंगी। तो वहां पर तो बहुत बड़ा स्वयंवर हुआ। यह भी एक कथा है। लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु को वरण किया। यह सब कुछ निकलने कर निकलने के बाद चौदवा रत्न, सब लोग उद्यम कर रहे थे, सब लोग परिश्रम मेहनत, और बहुत बहुत परिश्रम के बाद समुद्र मंथन से अंतिम रत्न भगवान धन्वंतरी अपने हाथ में अमृत का घड़ा लेकर बाहर निकले। और ये किस दिन निकले? धनतेरस जो हम कहते हैं, धनतेरस के दिन धन्वंतरी अमृत का घड़ा लेकर बाहर निकले। और क्या पता, आचार्यगण कहते हैं उस घड़े के ऊपर लिखा होगा अमृत, क्योंकि जैसे ये घड़ा लेकर निकले सब लोग जान गए कि अमृत निकल गया। और अमृत जैसे ही लेकर बाहर निकले तुरंत असुर लोग सब कुछ छोड़े और दौड़े उस अमृत को लेकर भाग। और बेचारे देवता देखते देखते रह गए, खड़े रह गए, जैसे फुटबॉल लोग हाथ में खेलते हुए एक दूसरे को देते हुए, वैसे असुर लोग, कुछ लोग सोच रहे थे हमारे हाथ में, असुर में भी सब अंदर अंदर झगड़ने लगे। बाप कहता है बेटा तेरे काम की चीज नहीं है, तू तो जवान है, मुझे दे, मैं जवान होना चाहता हूं। बेटा कहता है पिताजी आपको अमृत की जरूरत नहीं, आप बूढ़े हो गए, मर जाओगे, हमें जरूरत है इसकी। सब लोग दौड़ रहे थे, दौड़ते दौड़ते झगड़ रहे थे कि अमृत मुझे दो मुझे दो, असुरों के अंदर झगड़ा हुआ। अब क्या करें? देवता लोग बेचारे रोने की हालत में आ गए, अब क्या करें, अमृत लेकर आ गए। भगवान ने कहा डरो मत। तब भगवान श्री विष्णु ने इस लीला में तीसरा अवतार धारण किया। ये सब लोग दौड़ते दौड़ते अमृत के विषय में झगड़ रहे थे, उतने में ही भगवान श्री विष्णु, यद्यपि भगवान इतने सुंदर है, इतने सुंदर है, भागवत में आया है सूर सुंदर, भगवान देवताओं से करोड़ों गुना सुंदर है, ऐसे भगवान पुरुष रूप में इतना सुंदर लगते हैं, जब वह स्त्री रूप धारण कर ले तब तो कितना अद्भुत लगते हो। भगवान विष्णु ने उस समय स्त्री का रूप धारण किया और उस अवतार का नाम था मोहिनी अवतार। ऐसा रूप था, अरे सबकी बात छोड़ दीजिए, कामदेव को भस्मीभूत करने वाले शिवजी भी चक्कर में पड़ गए, शिवजी भी मोहित। इतना अद्भुत रूप भगवान ने स्त्री का रूप धारण किया। और ये लोग जिस दिशा की ओर भाग रहे थे, सामने से भगवान ठुमका लगाते हुए मोहिनी रूप में आ रहे थे। और ये लोग भागते भागते जैसे उस स्त्री के सामने देखे, अब जो अमृत के लिए झगड़ रहे थे उसे छोड़कर उस स्त्री के लिए झगड़ने लगे। ये मेरी है, ये मेरी है, बेटा इसे मैं रखूंगा, तुझे तो अभी बहुत जीना है, पिताजी आप क्या करोगे, आप चुप रहो, मैं रखूंगा। अमृत तो बाजू में रहा, अमृत में किसी को इंटरेस्ट नहीं है, भगवान का रूप ही इतना अमृत के समान है, ये साधारण अमृत कुछ नहीं। अमृत तो क्या पता किसके पास कोने में पड़ा था, अब तो इस स्त्री के सामने सब लोग देखने लगे। और जैसे ही वो स्त्री के नजदीक पहुंचे सब लोग सीरियस हो गए, कपड़ा वपड़ा ठीक कर दिया, टाई बाई पहन लिए। ये स्त्री में बहुत शक्ति है, व्यक्ति कितना भी उच्छृंखल हो, कैसा भी वो स्त्री सामने आ जाए तो बिल्कुल सीरियस हो जाता है, कैसी भी स्त्री क्यों ना हो। ये भागवत की बात है, जब यह सृष्टि का प्रारंभ हुआ तब ब्रह्मा जी ने पुरुषों को उत्पन्न किया, तो ये पुरुष लोग उत्पन्न होकर न जाने कहां कहां वैरागी बनकर घूमते रहते थे, कोई ठीक से घर पर नहीं रहता था, किसी का कोई ठिकाना ही नहीं था। ब्रह्मा जी ने बहुत पुरुष को उत्पन्न किया परंतु किसी का ठिकाना नहीं। तब ब्रह्मा जी ने बहुत सोचा अब क्या किया जाए, तब ब्रह्मा जी ने स्त्री को उत्पन्न किया, सब लोग घर पर, घर छोड़कर कोई जा ही नहीं रहा। उस दिन से लेकर आज तक भले वो स्त्री से कितना भी दुख मिले, कितनी भी गाली दे, कुछ भी करे, परंतु रात को ऑफिस से उसी घर में जाते हैं। तो स्त्री को देखकर सीरियस हो, इसलिए आज आप देखेंगे एरोप्लेन में भी एयर होस्टेस के रूप में स्त्री को ही रखते हैं, पुरुष को रखेंगे तो उत्पात करेंगे, स्त्री को देखकर चुप बैठते हैं सब। ये सत्य बात है, आजकल के एडवर्टाइजमेंट वाले भी जानते हैं। तो मोहिनी, और उसमें भी स्त्री में भी मोहिनी, जगत मोहिनी, पूरे जगत को मोहित करने वाले भगवान ही मोहिनी के रूप में अद्भुत रूप, सब लोग सीरियस। और पहुंचे मोहिनी के पास, उसने जो लीडर थे शक्तिशाली, सबको आगे करके, ए चुप रहो, बात करने दो मुझे। देवी कथम आगत, आप कहां से आई हो? प्रेम से, अब तक तो गाली दे रहे थे पिता पुत्र को, पुता पुत्र पिता को, बिल्कुल सॉफ्ट लैंग्वेज में, आपका आना कहां से हुआ? ये कुछ नहीं बोली। अच्छा ठीक है, आप मत बताओ, आप हो कौन? फिर भी भगवान चुप रहे। देखिए स्त्रियों की ये बहुत चालाकी होती है, कुछ नहीं बोलती हैं, भगवान कुछ नहीं बोले। अच्छा ठीक है, ये भी मत बताइए, आप इतनी सुंदर हो और यहां क्या कर रही हो? फिर भी कुछ नहीं बोले। फिर उसमें जो बड़ा असुर था का, ए अमृत लाओ यहां पर। ठीक है आप कुछ मत बताओ, हमारे बारे में जान लो, हम लोग ऐसा नहीं कि हम लोग असुर है, हम लोग कश्यप जी के पुत्र हैं, और यहां पर हमारे भाइयों के साथ हम लोग अमृत मंथन कर रहे थे। ऐसा भी नहीं बताया कि छीन कर लेकर भागे हैं, नहीं तो वैल्यू क्या रहेगी इसके सामने। ताकि हम दोनों भाई लोग आपस में मिलकर समुद्र मंथन कर रहे थे और ये अमृत निकला, देवी अमृत आप रखो। मैं क्यों अमृत लूं? अब पहला शब्द उनके मुख से, नहीं नहीं मुझे अमृत नहीं चाहिए, यद्यपि लेने के लिए आए थे, चाहती थी, परंतु ये स्त्री का स्वभाव होता है, बहुत मान खाती है, इच्छा बहुत होती है, परंतु पता नहीं चलता है अंदर क्या है बाहर क्या है, अद्भुत शक्ति है भगवान की। मैं, मुझे नहीं चाहिए अमृत, आप रखो इसे। नहीं नहीं ये आप रखो, ये हम लोग झगड़ा कर रहे हैं, एक काम करो, ये अमृत आप रखो और आप ही हमको पिला दो। तब वो स्त्री कहती है, मोहिनी ने कहा, देखो जीवन में कभी मैंने सर्विस नहीं किया, स्वयं सेवक का काम मैंने जीवन में नहीं किया, किसी को मिलेगा किसी को नहीं मिलेगा, इससे अच्छा है मैं, मुझे छोड़ो आप अपने तरह से बात करो, क्योंकि मैं सर्विस करूंगी, जीवन में कभी किसी को कुछ बांटा नहीं है, यदि किसी को मिला किसी को नहीं मिला तो। दो तीन लोग आया है आगे आकर बोले, चलेगा नो प्रॉब्लम, लेकिन आपके हाथ से बांटो। और जो बड़े बड़े थे कहा, चलेगा सबको? हाँ चलेगा चलेगा चलेगा। सब लोग मोहिनी के रूप में मोहित थे। फिर भी मोहिनी ने पहले, सुखदेव गोस्वामी लिखते हैं, पहले से ही सारी शर्त करा ली, देखो मुझे बांटने नहीं आता है, किसी को मिलेगा किसी को कम, किसी को ज्यादा, किसी को नहीं भी मिलेगा फिर मुझे मत कहना। देखिए भगवान का एक नाम सत्य है, भगवान हमेशा सत्य पर अडग रहते हैं। ये अवतार हो जाने के बाद लोग ये ना कहें कि भगवान झूठ बोलकर चले गए, पहले से कह रहे हैं मुझे आता नहीं है बांटने को, किसी को कम किसी को ज्यादा किसी को नहीं भी मिलेगा चलेगा, हमें किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है तो देखिए आप कहते हो इसलिए मैं रखती हूं, नहीं तो मुझे कोई आप में इंटरेस्ट नहीं है, यद्यपि पूरा पूरा इंटरेस्ट है इनको, परंतु स्त्रियों का स्वभाव, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपने कहा इसलिए रख लेते हूं, परंतु एक काम करो, बाजू में ही एक कमरा है, भगवान ने ही बनाया था, एक हॉल बनाया था ऐसा ही, आप और आपके भाई सब लोग इस कमरे में आओ, और एक काम करना अपने भाई को अलग से बिठाना और आप लोग अलग बैठना, तब मुझे पता चलेगा आपको है ना अच्छा अच्छा अमृत दूंगी और उनको पानी पानी पिलाऊंगी, तो दोनों अलग अलग बैठना। दो तीन जन गए, देवताओं को बुलाकर लाए, देवता तो आश्चर्यचकित हो गए, ये लोग अमृत लेकर भाग गए थे, सामने से बुलाने के लिए आए, आमंत्रण देने के लिए आए, देवता लोग आए असुर आए, सब लोग एक हॉल में बैठे, देवता इस लाइन में है, असुर लोग दूसरी लाइन में बैठे थे, और फिर भी मोहिनी बार बार पूछ रही थी, देखो गड़बड़ होगी चलेगा ना? कहां चलेगा बाटी। तब मोहिनी ने चार पांच जो बड़े बड़े असुर थे, असुरों के लीडर बुलाकर कहा, देखो ये जो अमृत है अमृत में ऊपर ऊपर का भाग पतला है, ये पतला पतला भाग देवताओं को पिला देती हूँ और नीचे का गाढ़ा अमृत में आपको पिलाऊंगी। इसलिए पहले देवताओं को पिलाकर भगा देती हूँ, बाद में आपको आराम से पिलाओगे, नो प्रॉब्लम। हम लोग बैठे हैं, आप उसे भगाओ जल्दी पिलाकर, हम लोग राह देखेंगे। ठीक है, देखेंगे ना राह? हाँ देखेंगे। मोहिनी के हाथ में वो अमृत का घड़ा है, सबसे पहले अपने भक्त देवताओं के हाथ में, सबके हाथ में ग्लास दे दिया, सबको पिला रही थी। भगवान एक एक करके सभी देवताओं को अमृत पिलाते रहे पिलाते रहे। उसमें जो असुर की टीम में एक राहु नाम का असुर था, देख लिया कि निश्चित ये अमृत सारा अमृत देवताओं को पिला देगी और समझ में आ गया कि निश्चित ये भगवान हो सकते हैं। इसलिए राहु ने देवता का वेश धारण करके सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाकर बैठ गया और उस समय भगवान बिल्कुल सूर्य चंद्रमा के करीब ही पहुंचे थे। पिलाते 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 राहु की बारी आई, हाथ में ग्लास था, सूर्य और चंद्र को पता चल गया कि बीच में असुर आकर बैठा है, परंतु बोले तो ये असुर उधर ही मार डालेंगे, इसलिए बोल नहीं पाए, लेकिन दोनों अंदर ही अंदर इशारा कर रहे थे, प्रभु ये बैठा है, प्रभु बैठा है, प्रभु का ध्यान नहीं था। प्रभु ने बात दिया उसके ग्लास में और जैसे ही वो पीने गया ये दोनों नहीं रह सके और आंख खोल कर प्रभु ये वहां से बैठा है। भगवान ने कहा वहां से तो पहले बोलो, तुरंत मोहिनी ने चक्र धारण किया और चक्र धारण करके राहु का सिर काट दिया, परंतु सिर काटते ही वह मुंह में अमृत धारण कर चुका था, इसलिए उसका मुख जो है अमर हो गया, बिना धड़ का हो गया। अब सुखदेव गोस्वामी इस प्रसंग के अंतिम श्लोक में लिखते हैं, ये तो ठीक है अमृत समुद्र मंथन हुआ, अमृत पिला दिया, देवता लोग शक्तिशाली हुए, ये कथा बहुत लंबी है, परंतु सूर्य और चंद्रमा ने राहु को मारने के लिए इशारा किया था, उस दिन से लेकर आज तक राहु जो है सूर्य और चंद्र का दुश्मन है और राहु सूर्य और चंद्र को खाने के लिए मारने के लिए उसके पीछे दौड़ता है और कभी और राहु प्रायः सूर्य और चंद्र को खा भी लेता है, परंतु उसका धड़ तो है नहीं, यहां से खाएगा यहां से निकल जाते हैं, इसलिए इतनी तकलीफ भी नहीं होती है। तो सुखदेव गोस्वामी लिखते हैं इस दिन से लेकर आज तक ये राहु जो है सूर्य को पकड़ने के लिए जाता है तो उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं और चंद्र के पीछे, जब चंद्र की वैज्ञानिक के अनुसार सूर्य जो है एक गति में घूमता है और राहु जब उसकी गति में आता है, उसके रूट में, उसके हाईवे में जब आ जाता है तो उसे सूर्य ग्रहण कहा जाता है और चंद्रमा की क्षितिज में आता है तो चंद्र ग्रहण कहते हैं। तो इस प्रकार इस घटना से, समुद्र मंथन से राहु और सूर्य और चंद्रमा के बीच में दुश्मनी हुई और उस दिन से यह ग्रहण जो है प्रारंभ हुआ। यह ग्रहण का इतिहास कथा के प्रारंभ में मैं आपको सुनाया हूं, परंतु ग्रहण को लोग अपवित्र मानते हैं, ये ठीक है क्योंकि भगवान के भक्त को राहु खाने के लिए चलता है, परंतु यह दिन की बहुत महिमा है। आज के दिन की बहुत अन्य अन्य पुराणों में ग्रहण के विषय में बहुत लिखा गया है, मैं और सब की बात नहीं करूंगा, गरुड़ पुराण में लिखा है गो कोटि दानम ग्रहणे खदस्य, कहते हैं कि आप अन्य अन्य दिनों में यदि दान करो तो उस वह दान करने में आपको जितना फल मिलता है उससे हजारों गुना ज्यादा फल ग्रहण के दिन दान करने पर मिलता है, इसलिए ग्रहण के दिन ज्यादा से ज्यादा दान करना चाहिए। परंतु गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु गरुड़ जी को बहुत सुंदर बात कहते हैं कि इस ग्रहण के दिन और ग्रहण के समय क्या करना चाहिए, कहते हैं गो कोटि दानम ग्रहणे खदस्य प्रयाग गंगो कोटि कल्पवास, कहते हैं कि ग्रहण के दिन यदि करोड़ों करोड़ों गायों का दान करे और उससे जो फल मिलता है उस फल को आप बाजू में रखिए। कितना फल मिलेगा? साधारण दिन में करोड़ों गाय का दान करो तो फल का कोई सीमा ही नहीं है। ग्रहण के दिन दान करेंगे तो बहुत फल मिलता है। तो ग्रहण के दिन गायों को दान करने का फल, और प्रयाग गंगो कोटि कल्पवास, जहां गंगा यमुना और सरस्वती का संगम है, ऐसे तीर्थ राज प्रयाग में कोटि कल्प तक ब्रह्मा जी के एक दिन तक यदि कोई वास करे और जो फल मिलता है उतना फल। और यज्ञायुतम मेरु सुवर्ण दानम, और यदि कोई व्यक्ति सोने का दान करे, धन का दान करे, किसी को भोजन दे, कहते इसका जो फल है, ये सब का फल यदि हम एकत्रित करते हैं, करोड़ों करोड़ों गायों का दान, करोड़ों गायों का दान, तीर्थराज प्रयाग में रहने का फल, गायों के दान का फल, और बड़े बड़े पर्वत जैसे सोने और गहने और धन दान करने का फल, ये सारा फल मिलाकर गोविंद नाम शतम शतांशे, ये सारा फल भगवान गोविंद के नाम के सौवे हिस्से के बराबर भी नहीं है। भगवान के नाम की और भगवान की कथा की इतनी महिमा है, ये गरुड़ पुराण प्रमाण है। आज यदि वैसे तो आप भगवान का नाम लोगे और कथा सुनोगे तो उसका फल बहुत है, परंतु आज के दिन यदि आप भगवान का नाम लेते हो और भागवत कथा सुनते हो तो इस कथा सुनने का हजारों गुना फल मिलता है। बताइए हम सबका कितना बड़ा सौभाग्य है। हमने सोचा नहीं था कि आज के दिन ग्रहण होगा, हम तो धनजी भाई ने भी सोचा था, भगवान के योग से हो गया और इससे हमें बहुत बहुत गुना फल प्राप्त हो। और इसी के साथ साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि धन्य है धनजी भाई जिन्होंने आज इस कथा का आयोजन करने में इतना सुंदर लाभ प्राप्त किया है, इतना सुंदर योगदान दिया है। कहते हैं कथा आयोजन करने वाला, कथा करने वाला जो दान करता है, इससे बड़ा दानी संसार में कोई है ही नहीं। ये मैं नहीं कहता हूं, भागवत के दशम स्कंद में लिखा है, गोपियां कहती हैं, तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीदितम कल्म शापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणंति ते भूरि दार्जना। इस भुवि गृणंति, इस भूमि में, इस पृथ्वी में कई प्रकार के दान है, परंतु तव कथा, हे कृष्ण, आपकी कथा करने वाला और आपकी कथा आयोजन करने वाला इस संसार में सबसे बड़ा दानी है। इस दानी की तुलना में कोई है ही नहीं, क्योंकि और सब आप दान करते हैं, मान लीजिए किसी को पैसे दे देंगे परंतु वे पैसा जीवन भर सुख नहीं देगा। आप किसी को कपड़े देते हैं तो कपड़ा कब तक चलेगा? आप किसी बीमार व्यक्ति को ठीक कर देते हो, कब तक सुखी रहेगा? परंतु यदि आप भागवत दे देते हो, भगवान की भक्ति दे देते हो, तो जन्म जन्मांतर तक वह सुखी हो जाता है। सबसे बड़ा दान नंजी भाई ने हाथ में लिया है और हमने भी सबसे बड़ा श्रवण करने का मौका आज प्राप्त किया है। तो ये तो केवल मैं आपको इंट्रोडक्शन दिया, आज के दिन की महिमा कथा तो अब प्रारंभ होगी, इसलिए धैर्य रखिए। तो आज भागवत कथा हम केवल प्रारंभ कर देते हैं, कल से इसको गति प्रदान करेंगे, वेग देंगे। श्रीमद् भागवत अमल पुराण बहुत महिमावान पुराण है। भागवत की महिमा अनंत है, अपार है, और प्रायः भागवत सुनने से पहले भागवत की महिमा जानना बहुत आवश्यक है। और भागवत की महिमा आप देखेंगे, भागवत की महिमा भागवत नहीं कहता है, क्योंकि यदि भागवत ही अपनी महिमा कहने लगे तो ये तो आत्मश्लाघा होगा, तो बहुत बड़ा दोष होगा, क्योंकि अपनी प्रशंसा करने वाला व्यक्ति सबसे बड़ा मूर्ख होता है। इसलिए भागवत की महिमा भागवत में नहीं दी गई है, भागवत की महिमा स्कंद पुराण और पद्म पुराण में बताई गई है। अन्य पुराण भी भागवत की महिमा बताते हैं। खैर हमारे पास केवल 7 दिन है और बहुत कथा करनी है, इसलिए सभी महिमा के बारे में नहीं, परंतु एक पुराण में एक महिमा वेद व्यास जी बहुत सुंदर प्रकार से बताते हैं स्कंद पुराण में। वेद व्यास जी भागवत के पहले भागवत की महिमा कहते हैं, और भागवत की महिमा प्रारंभ करने से पहले वेद व्यास जी इस भागवत के प्रतिपाद्य विषय को प्रणाम करते हैं। भागवत का मुख्य विषय, भागवत का मुख्य तत्व यदि कोई है तो है भगवान श्री कृष्ण। अत्र सर्ग विसर्गस्य स्थानं पोषण मुतय मन्वन्तरेषानुकता निरोध मुक्ति आश्रय, ये आश्रय तत्व जो है वो है साक्षात भगवान श्री कृष्ण। इसलिए भागवत प्रारंभ करने से पहले वेद व्यास जी भागवत के प्रतिपाद्य विषय भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः, प्रारंभ करते हैं मंगलाचरण से, और अद्भुत मंगलाचरण। यदि कोई व्यक्ति वेद व्यास जी का यह मंगलाचरण समझ जाए, श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक समझ जाए, तो पूरे भागवत को समझ सकता है। अद्भुत श्लोक है।
सच्चिदानंद रूपाय विश्वपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयम् नमः।
सच्चिदानंद रूपाय, वेदव्यास जी भगवान को मंगलाचरण कर रहे हैं। मंगलाचरण का अर्थ होता है मम पाप गलयति इति मंगलाचरण। मम पाप, मेरे पाप गलयति अर्थात मेरे पाप धोने वाले को मंगलाचरण कहा जाता है। मंगलाचरण क्यों किया जाता है? समाप्ति कामो मंगलम आचरेत, शास्त्र में कहा गया है। यदि कोई व्यक्ति अपने अनुष्ठान को निर्विघ्न रूप से समाप्त करना चाहता है तब उसे मंगलाचरण करना चाहिए, गुरु वैष्णव और भगवान को प्रणाम करना चाहिए। इस मंगलाचरण के द्वारा वेद व्यास जी भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं, और इस मंगलाचरण में भगवान के स्वरूप का परिचय, भगवान श्री कृष्ण के सामर्थ्य का परिचय और भगवान श्री कृष्ण के स्वभाव का परिचय दे रहे हैं। सच्चिदानंद रूपाय, यह कह के भगवान का रूप बता रहे हैं। कहते हैं कृष्णाय, भगवान श्री कृष्ण का रूप कैसा है? सत चित आनंदमय। सत का अर्थ होता है शाश्वत, अस्ति इति सत, जो शाश्वत काल तक रहे, जिसका अंत न हो, उसे सत कहा जाता है। इस संसार में भगवान ही एक ऐसे हैं जिसका कभी अंत नहीं है, इसलिए भगवान को ही सत कहा जाता है। जो तीनों काल में सत्य रहते हैं, भूत भविष्य वर्तमान, भगवान के लिए कभी भूतकाल नहीं होता है, वो थे, भगवान थे हैं और रहेंगे। तीनों काल में जो सत्य रहे, उपस्थित रहे, उसे सत कहते हैं। और वे ऐसे सत्य कौन है? वेदव्यास जी कहते हैं कृष्ण। चित का अर्थ होता है उपस्थित रहना, उपस्थित रहकर चेतना प्रदान करना। चित का अर्थ होता है चेतन तत्व। इस संसार में जितनी भी चेतना है ये सब भगवान कृष्ण से आती है। हमारा शरीर जो काम कर रहा है, हाथ ऊपर नीचे कर रहा है, यदि परमात्मा अंदर बैठे बैठे शक्ति न दे तो यह शरीर भी हिल नहीं सकता है। शरीर को भी चेतनीभूत करने वाले, विश्व ब्रह्मांड को चेतनीभूत करने वाले एकमात्र कृष्णाय वयम नुम, एकमात्र कृष्ण है। वेद व्यास जी कह रहे हैं सचित और आनंद। भगवान का स्वरूप क्या है? आनंदमय। भगवान कभी टेंशन में नहीं रहते हैं। टेंशन में तो हम लोग होते हैं, इतना टेंशन में होते हैं, इतना टेंशन में होते हैं, लगता है मनमोहन सिंह ने सारे भारत का भार हम पर ही सौंप दिया है। ऑफिस से आते हैं इतना सीरियस और गंभीर रहते हैं। भगवान यद्यपि एक नहीं अनंत कोटि ब्रह्मांड चलाते हैं, परंतु टेंशन कुछ नहीं, बिंदास रहते हैं, आनंदमय, उल्टा आनंदमय रहते हैं, आनंद में मग्न रहते हैं। इसलिए उनका नाम ही है कृष्ण। कृष्ण का अर्थ ही होता है आनंद। उपनिषद में कहा गया है, कृषि भूवाचक नच निवृत्ति वाचक तयेर एक्य परब्रह्म कृष्ण अपि अभिधीयते। जैसे कृषि का अर्थ होता है उत्पन्न होना और अण का अर्थ होता है आनंद, जिससे केवल आनंद ही आनंद उत्पन्न होता रहे उसे कृष्ण कहा जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण आनंदमय है, वे ही सबको चेतना दे रहे हैं और वे ही सत्य है, वे ही तीनों काल में सत्य रहते हैं। यह है भगवान का स्वरूप। भगवान का सामर्थ्य क्या है? भगवान की सामर्थ्यता क्या है? कहते हैं विश्व पत्यादि हेतव, विश्व उत्पत्ति आदि हेतव। इस संसार में संसार को बनाने वाले, संसार को चलाने वाले और संसार का प्रलय करने वाले कौन है? कृष्णाय। कृष्ण ही संसार को बनाते हैं, सृजन करते हैं, कृष्ण ही संसार को चलाते हैं, कृष्ण ही संसार का प्रलय करते हैं। इस प्रकार की जब बात हम करते हैं तो जो धनी लोग होते हैं वे अहंकार में आकर कहते हैं, अरे कृष्ण थोड़ी ना चलाते हैं, हम चलाते हैं, और मेरी ऑफिस में, मेरी फैक्ट्री में काम करते हैं उसका भगवान मैं हूं, क्योंकि मैं सबको पगार देता हूं। परंतु ऐसे लोगों को यह समझना चाहिए, पगार आप देते हो, हवा कौन देता है? यदि भगवान श्री कृष्ण ऑक्सीजन देना बंद कर दे, कहां से लाओगे? कहां से ला सकते हो? कोई किसी व्यक्ति के पास कितना भी धन हो, कितना भी बैंक बैलेंस हो, परंतु भगवान यदि हवा ही न दे, व्यक्ति कहां जाएगा? धन मुख्य नहीं है, भगवान की कृपा मुख्य है। केवल हवा नहीं, भगवान पानी देते हैं, पानी देने वाले भगवान हैं। वैज्ञानिक लोग कहते हैं, अरे पानी देने वाले भगवान थोड़ी है, पानी तो H2O से बनता है, पढ़ने में आता था सबको। हाइड्रोजन का दो भाग और ऑक्सीजन का एक भाग जब मिलता है तब पानी बनता है। उस मूर्ख को कहना चाहिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कौन बनाता है? यदि आप ऐसा मानते हो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से पानी बनता है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कौन बनाता है? भगवान बनाते हैं। इतना ही नहीं, किसी के पास कितना भी धन हो या सूर्य न हो तो ये भगवान की शक्ति है, ये भगवान की देन है। एक सूर्य हजारों लोगों के कपड़े को सुखा देता है, हजारों लोगों की रोशनी को बनाता है। आज सब लोग लाइट बिल से कितने परेशान हैं, आप कल्पना करो यदि सूर्य बंद हो जाए तो लाइट बिल भर भर कर मर जाएंगे हम। कितना दे रहे हैं भगवान। यदि ऑक्सीजन न मिले तो कभी हॉस्पिटल में जाकर पूछ लीजिए ऑक्सीजन का कितना रेट है। पानी देने वाले भगवान, सूर्य प्रकाश देने वाले भगवान, ऑक्सीजन हवा देने वाले भगवान, बारिश देने वाले भगवान, सब कुछ देने वाले भगवान, फिर भी हम कहते हैं कि भगवान है ही नहीं और सबका भगवान मैं हूं। बहुत बड़ी गलत फहमी है। और यहां वेदव्यास जी कहते हैं विश्व पत्यादि हेतव, कृष्ण ही ये सब कुछ करते हैं। और भागवत के तृतीय स्कंद में तो साक्षात भगवान कहते हैं, मद भयाति वाति वातोयम सूर्य तपति मद भयात, वर्षत इंद्र दह्यत अग्नि मृत्यु शरति मद भयात। कहते हैं मद भयाति वातो वातोयम, ये पवन देव वायु चला रहे हैं, मद भयात मेरे भय से, सूर्य तपति मद भयात, सूर्य रोज सुबह 6 बजे आ जाता है मेरे डर से। जैसे ऑफिस में एक कारीगर टाइम टू टाइम अपने मालिक के डर से टाइम टू टाइम आ जाते हैं, वैसे ये सूर्य चंद्र हवा पानी प्रकाश भगवान के डर से आते हैं। यदि भगवान ना कह दे या कृपा उठा ले तो सब लोग मर जाएंगे। भगवान की देन है, भगवान ही विश्वपति आदि हेतव, भगवान ही कारण। इसलिए यह अंग्रेजों ने जो भगवान को नाम रखा है, भगवान को गॉड कहते हैं। वास्तव में हम लोग भगवान को नहीं समझ सके, परंतु ये अमेरिका में और लंदन में रहने वाले समझ गए। भारत इतना सांस्कृतिक देश होते हुए भी भगवान को नहीं समझ पाया, परंतु विदेशों में रहने वाले भगवान को मान गए। इसलिए भगवान को गॉड कहते हैं। गॉड का अर्थ जानते हैं? गॉड में तीन अक्षर है, जी ओ डी। जी का अर्थ होता है जनरेटर, अर्थात सृष्टि करने वाला। जी का अर्थ होता है जनरेटर, अर्थात सृष्टि करने वाला। ओ का अर्थ होता है ऑपरेटर, अर्थात इसे चलाने वाला। और डी का अर्थ होता है डिस्ट्रॉयर, अर्थात इसका प्रलय करने वाला। गॉड का अर्थ ही होता है सृष्टि करने वाले, चलाने वाले और इसका प्रलय करने वाले। जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर, वो समझ गए, परंतु हम किसी को नहीं पता है भगवान क्या करते हैं, क्या होता है। वेद व्यास जी कहते हैं, वह गॉड, वह भगवान, वह कृष्ण ही विश्वपति आदि है तव, जो सृष्टि का सर्जन करते हैं, पालन करते हैं और वही प्रलय करते हैं। यह है भगवान का सामर्थ्य परिचय। और भगवान का स्वभाव कैसा है? तब वेद व्यास जी कहते हैं, तापत्रय विनाशाय। संसार में सब लोग दुखी हैं, सब लोग ताप से जल रहे हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक। परंतु यदि कोई व्यक्ति उस भगवान की शरण में चला जाए, कहते हैं तापत्रय विनाशाय, वे भगवान सभी दुख को दूर कर देते हैं, सभी अमंगल को हर लेते हैं, सभी दुख को हर लेते हैं और मंगल प्रदान करते हैं। इसलिए गोस्वामी जी गाते हैं, भगवान शिव रामायण के प्रारंभ में मंगलाचरण करते हैं,
मंगल भवन य मंगल हारी, मंगल भवन य मंगल हारी, मंगल भवन य मंगल हारी, मंगल भवन य मंगल हारी,
मंगल
मंगलहारी, जो सभी अमंगल को हर लेते हैं और मंगल प्रदान करते हैं, दुखों को हर लेते हैं, सुख देते हैं, ऐसे दशरथ के पुत्र मेरे ऊपर द्रवित हो, मेरे ऊपर अनुग्रह करे, कृपा करे। रामायण के प्रारंभ में शिव जी भी भगवान श्री राम को प्रार्थना करते हैं, यहां वेदव्यास जी भागवत के प्रारंभ में कृष्णाय वयम नमः, कृष्ण को प्रार्थना करते हैं। कृष्णाय, कृष्ण को वयम, मैं नहीं, हम सब लोग। वयम माने बहुवचन में, यदि यहां पर अहम शब्द होता तो मैं होता, परंतु वयम माने हम सब लोग। और नमः, यदि वेदव्यास जी अकेले प्रणाम करते तो नमः शब्द आता, परंतु नमः शब्द का अर्थ है हम सब लोग बहुवचन में। वेदव्यास जी कहते हैं कि हम सब लोग हे कृष्ण आपके चरण में प्रणाम करते हैं। कथम भूतम कृष्ण, कैसे कृष्ण के चरण में? तो जो कृष्ण सच्चिदानंद रूप वाले हैं, जो कृष्ण संसार का सर्जन करते हैं, पालन करते हैं, प्रलय करते हैं, और जो कृष्ण सभी दुखों को हरकर सुख प्रदान करते हैं, ऐसे कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूं। इस प्रकार कृष्ण को प्रणाम करके वेद व्यास जी भागवत महिमा प्रारंभ करते हैं और बहुत सुंदर कथा वेदव्यास जी इस कथा को नैमिषारण्य में लेकर जा रहे हैं, जहां पर 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित हुए हैं और उस 88,000 ऋषियों में सबसे श्रेष्ठ शौनक जी थे। और नैमिषारण्य बहुत पवित्र भूमि थी। कलयुग के प्रारंभ में, द्वापर के अंत में, ये 88,000 ऋषि मुनि ब्रह्मा जी के पास गए और कहा कि ऐसे स्थान का निर्देशन कीजिए जहां पर कलयुग का प्रभाव न हो। ब्रह्मा जी ने मनोमय चक्र बनाया, उस मनोमय चक्र को छोड़ा, जहां जाकर उस चक्र की क्षीण जो नौमी होती है वह क्षीण हो गई, अर्थात उनकी धार चली गई, वह चक्र जहां गिरा वही स्थान हुआ नैमिषारण्य। उस स्थान में कलयुग का प्रभाव नहीं था। उस नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषि मुनि आए हैं, बैठे हैं। यद्यपि आए थे यज्ञ करने के लिए, नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषय शौनकादय सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्रम सममासत, सहस्त्र वर्ष का यज्ञ का अनुष्ठान करने के लिए बैठे थे। परंतु एकदा तुम मुनय प्रातर हुत हुताग्नय सत्कृतम सुत मासिनम प्रपच्छु इदमादरात। एक दिन की बात, सुत गोस्वामी वहां पर आए और सुत गोस्वामी वहां पर आए तो यज्ञ फज्ञ सब बंद किया, सुत गोस्वामी को आसन दिया, आसन देकर बिठाया और आसन देकर सुत गोस्वामी को शौनक जी क्या कहते हैं। शौनक वाच अज्ञान ध्वान्त विद्वन् कोटि कुर सूर्य सम प्रभ सूत ख्याति कथा सारम मम कर्ण रसायणम। शौनक ऋषि सुत गोस्वामी को कहते हैं कि हे सुत जी, आप अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाने वाले हो। दृष्टांत देते हैं कि जैसे सूर्य रात के अंधकार को मिटा देता है, 10-12 घंटे तक अंधकार रहता है, परंतु जैसे ही सूर्य आता है तो वह अंधकार चला जाता है। और भक्तों, सूर्य के अलावा आप इस दुनिया की कितनी भी रोशनी जला दीजिए, कितने भी दिए जला दीजिए, परंतु उस रात्रि के अंधकार को और कोई नहीं मिटा सकता है। केवल भगवान भास्कर सूर्य देवता ही उस अंधकार को मिटाने में समर्थ है। सूर्य की उपमा देकर कहते हैं कि हे सुत गोस्वामी, हमारे हृदय में हजारों हजारों वर्षों से अंधकार रूपी अज्ञान भरा हुआ है और इस अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाने के लिए एक सूर्य काफी नहीं है। इस अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाने के लिए कोटि सूर्य, करोड़ों सूर्य चाहिए। और हे सुत गोस्वामी, आप करोड़ों सूर्य के समान अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाने वाले हो, इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमें ऐसी कथा सुनाइए ताकि हमारा अंधकार दूर हो जाए। भक्ति ज्ञान विरागाप्ता विवेको वर्धते महा माया मोह निराशश्च वैष्णवे क्रियते कथम। हे सुत गोस्वामी, हमारे हृदय का समस्त अंधकार दूर हो जाए ऐसी कुछ कथा सुनाइए। इतना ही नहीं, भक्ति ज्ञान वैराग, हमारी भक्ति बढ़े, हमारा वैराग्य बढ़े, हमारा ज्ञान बढ़े और हमारा विवेक बढ़े, ऐसी कथा सुनाइए। इस संसार में देखा गया है और सब कुछ सबके पास है, परंतु विवेक बहुत कम है। विवेक की बहुत कमी है। विवेक का अर्थ होता है सत और असत को पहचानना। इस संसार में दो प्रकार की वस्तु है, सत और असत। और हम सब लोग सत और असत को पहचानने में धोखा खा जाते हैं, विवेक नहीं है। और इसी के कारण ज्ञान भक्ति और वैराग्य की बहुत कमी है, सत्य को बहुत लोग नहीं जानते हैं। कुछ ऐसी कथा सुनाइए ताकि हमारा विवेक बढ़े, हमारा ज्ञान बढ़े। शेय साम यद भवेच्छेय पावनानाम च पावनम कृष्ण प्राप्ति करम शश्वत साधनम त्वत अधुना। हे सुत गोस्वामी, ऐसी कथा सुनाइए ताकि डायरेक्ट कृष्ण प्राप्त हो जाए। न धनम न जनम न सुंदरी, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें कोई ऐसी पत्नी नहीं चाहिए जिससे हम विवाह करें, घर छोड़कर तो यहां पर आए। न धनम, हमें धन की भी आवश्यकता नहीं है। हमें स्वर्ग भी नहीं चाहिए, हमें कृष्ण चाहिए। ऐसी कथा सुनाइए, कृष्ण मिल जाए, कृष्ण की प्राप्ति हो। चिंता मणि लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम प्रयच्छी गुरु प्रीतो वैकुंठ योगी दुर्लभ। सुत गोस्वामी, वास्तव में आपको एक बात कहें, यदि किसी व्यक्ति को चिंतामणि मिल जाए तो इस भौतिक संसार का सुख मिल जाता है। यदि किसी व्यक्ति को कल्प वृक्ष मिल जाए तो वह स्वर्ग का सुख प्राप्त कर लेता है। परंतु यदि किसी व्यक्ति को आपकी जैसा गुरु मिल जाए, वह तो वैकुंठ का सुख प्राप्त कर सकता है। आपके जैसे गुरु धन्य है प्रभु। आप हमें कथा सुनाइए, आपके ऊपर संपूर्ण विश्वास है। देखिए, इस प्रकार से श्रोताओं का विश्वास होना चाहिए वक्ता के ऊपर। कितना विश्वास है 88,000 ऋषि मुनियों को। कहते हैं कि आपकी शरण में आपसे यदि हम सुनेंगे तो वैकुंठ मिलेगा हमें। और इस विश्वास के कारण पहले के श्रोता बहुत कम सुनते थे और 7 दिन में केवल भगवान को प्राप्त हो जाते थे। और आज इस कलयुग में 7 दिन नहीं, 7 साल नहीं, 70 साल सुनते फिर भी जीवन में कोई फर्क नहीं आता है। क्यों? क्योंकि बोलने वाले पर विश्वास नहीं। विश्वास होना चाहिए। भागवत में बार बार आया है, 3 चीज के ऊपर विश्वास होना चाहिए। जिस ग्रंथ के ऊपर कथा चल रही है उस भागवत के ऊपर विश्वास होना चाहिए, भगवान के ऊपर विश्वास होना चाहिए और बोलने वाले वक्ता के ऊपर विश्वास होना चाहिए। जितना विश्वास होगा उतना भगवान की ओर जल्दी आगे बढ़ सकते हैं, वैकुंठ प्राप्त हो सकता है। प्रीति शोनक चित्ते ते हय तो वच्मि विचार्य सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भय नाशनम। इस प्रकार से शोनक ऋषि ने प्रश्न पूछा। और वास्तव में प्रश्न क्या पूछा, वेद व्यास जी लिखते हैं, इस संसार का उद्धार करने के लिए बहुत बड़ी जिज्ञासा कर दी, बहुत बड़ा जिज्ञासा। क्योंकि इस यह प्रश्न से जो कथा आएगी, इस कथा से करोड़ों करोड़ों लोगों का उद्धार हो सकता है। जिज्ञासा की और जिज्ञासा से सुध गोस्वामी प्रसन्न हुए। सुध गोस्वामी प्रसन्न होकर कहते हैं, काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णाश हेतव श्रीमद भागवतम शास्त्र कलो किरेण वाषितम। आप लोग भगवान की प्राप्ति करना चाहते हो, आप लोग विवेक उत्पन्न करना चाहते हो, आप लोग सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करना चाहते हो, तो उसके लिए एक ही कथा है जो सबसे उत्तम है। तब ऐलान करते हैं कि भगवत प्राप्ति करने के लिए कृष्ण को देने वाली एक ही कथा है, वो है श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो किरेण भाषितम। श्रीमद् भागवत ही भगवान को दे सकता है, अन्यथा और कोई भगवान की प्राप्ति नहीं करा सकता। श्रीमद् भागवत ही काल व्याल। कहते हैं इस कलयुग में सब लोग काल के मुख में हैं, सब लोग मर रहे हैं, ऐसा कोई नहीं जो जी रहा है। प्रायः हम शब्द इस्तेमाल करते हैं कि हम जी रहे हैं, यदि हम जी रहे हैं तो दिन भर दिन हमारी उम्र बढ़ती जाती, परंतु हमारी उम्र कम हो रही है, इसका अर्थ है कि हम मर रहे हैं, उल्टी गिनती चल रही है। यदि जी रहे होते तो प्लस होता कि आज एक साल बढ़ा, दूसरा बढ़ा। हम सब लोग काल के मुख में हैं, कब वह काल गप करके खा जाए कोई भरोसा नहीं है। ऐसे कलयुग में, ऐसे घोर कलयुग में भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं तो एकमात्र भागवत ही उत्तम कथा है। इसलिए मैं आपको भागवत सुनाऊंगा, परंतु भागवत सुनाने से पहले भागवत की महिमा जान लीजिए, क्योंकि जब तक किसी विषय के ऊपर विश्वास और श्रद्धा नहीं होती है तब तक उस विषय को ग्रहण करने में बहुत कठिनाई होती है। विषय वस्तु के बारे में जानना बहुत आवश्यक है। तब सुध गोस्वामी कहते हैं कि यह कथा एक समय की बात, मैं अभी अभी जिससे सुनकर आया हूं, मेरे गुरु सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को यह कथा सुनाई थी। और हे 88,000 ऋषि मुनियों, हे शौनक जी, परीक्षिते कथा वक्तुम सवायाम संस्थिते मुने सुधा कुंभ ग्रहितेव देवा तत्र समागतम। परीक्षिते कथा वक्तुम, परीक्षित महाराज को कथा सुनाने के लिए सुखदेव गोस्वामी गंगा की पवित्र धारा में सुखताल में जब बैठे, कथा प्रारंभ करे उसके पहले ये देवतागण, जिसको अमृत दिया था भगवान ने, समस्त देवता अपने हाथ में अमृत का कलश लेकर सुखदेव गोस्वामी के पास आए। शुकम नत्वा वदन सर्वे स्व कार्य कुशला सुरा। सुध गोस्वामी कहते हैं ये देवता जो है बिजनेस करने में बहुत एक्सपर्ट है। स्व कार्य कुशला सुरा, अपना कार्य निकालने में, अपना स्वार्थ साधने में बहुत कुशल है। तो अपना स्वार्थ साधने में कुशल वे देवता अमृत लेकर सुखदेव गोस्वामी के पास आए और उनको अमृत का घड़ा देकर कहा, कथा सुधाम प्रयच्छस्व गृह देव सुधाम इमाम। वे देवता लोग सुखदेव गोस्वामी को कहने लगे, सुखदेव जी आप एक काम करो, ये अमृत का घड़ा आप रखो और इस अमृत के बदले में आप हमें भागवत कथा अमृत बांटो। ये अमृत परीक्षित को पिला दो और आप हमें भागवत कथा अमृत, अर्थात ये देवता लोग बिजनेस करने के लिए आए। जिसकी बुद्धि में बिजनेस घुस गया है वे कहीं भी जाकर बिजनेस ही देखेगा। वे बिजनेसमैन वृंदावन में गया तो वही दिखेगा, यहां पर गेस्ट हाउस खोलेंगे तो बहुत अच्छा है, अच्छा पैसा कमाने मिलेगा। ये देवता भी यहां इतनी सुंदर कथा चल रही है, आकर बैठ गए होते, सुने होते कोई प्रॉब्लम नहीं था, सुखदेव गोस्वामी को कुछ प्रॉब्लम नहीं था आकर बैठकर सुने होते, परंतु ये बिजनेस की बात किए कि आप ये अमृत रखो और अपना कथा अमृत दो। सुखदेव गोस्वामी क्रोधित हो गए, आप यहां मेरे साथ बिजनेस करने के लिए आए हो? क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काच क मणि महान। आप इस स्वर्ग के तुच्छ अमृत की तुलना मेरी भागवत कथा अमृत के साथ करते हो? अरे कहां तुम्हारा यह पत्थर के समान यह अमृत और कहां यह कांच मणि के समान मेरी भागवत कथा। वास्तव में अमृत दो प्रकार का, एक देवताओं वाला अमृत, एक भागवत कथा अमृत। अंतर क्या है? देवता का अमृत पीने से व्यक्ति निरोग हो सकता है, आयु लंबी हो सकती है, परंतु मरने से नहीं बच सकता है। तेतम भूत्वा स्वर्ग लोकम विशालम, वे बहुत विशाल समय तक रह सकते हैं परंतु क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशन्ति, परंतु अमृत पीने के बाद ही उसे मरना पड़ता है। परंतु यदि कोई कथा अमृत का पान कर ले, भागवत कथा अमृत का पान करे, तब तो वह व्यक्ति जन्म जन्मांतर के मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो सकता है, मरने से बच सकता है। कहां तुम्हारा यह कांच का टुकड़ा, कहां पत्थर और कहां यह कथा रूपी मणि। भागो यहां से, यहां से तुरंत भागो, मैं तुम्हारा मुख नहीं देखना चाहता हूं, भगा दे। भागवत की महिमा अद्भुत है। सुध गोस्वामी दूसरा इतिहास सुनाते हैं। कि परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ने 7 दिन तक कथा सुनाई और केवल 7 दिन में, 7 दिन कथा सुनने से 7वें दिन भागवत कथा सुनने से साक्षात भगवान के पार्षद आए और परीक्षित महाराज को अपने धाम में लेकर चले गए। ये बात पूरे विश्व में फैल गई। क्यों नहीं फैलेगी भाई? यहां यदि कथा चले और कोई विमान आए और किसी को बिठाकर लेकर जाए, कल के दिन में पूरे पेपर में नहीं आ जाएगा? और तब का मीडिया अब से बहुत फास्ट था, क्योंकि अभी तो मीडिया वाले कुछ मिलावट भी करते हैं। पहले के मीडिया नारद मुनि और बड़े बड़े मीडिया वाले थे, तुरंत सब जगह पर वायु वेग से फैल जाता था। परीक्षित महाराज 7 दिन कथा सुनकर भगवान के धाम में चले गए। यह बात ब्रह्मलोक तक चली गई। ब्रह्मा जी को पता चला, ब्रह्मा जी को जब पता चला, राग्यो मोक्षम सुराविक्ष पुरा धाता अपि विस्मृत। धाता ब्रह्मा जी भी सोचे कि 7 दिन में परीक्षित महाराज भगवान के धाम में चले गए, ये बात कुछ हजम नहीं होती। हाँ, भक्ति करने से लोग भगवान के धाम में जाते हैं, परंतु केवल 7 दिन भागवत सुनने पर धाम में जाए, ये कुछ बात ठीक नहीं लगे। शुद्ध गोस्वामी कहते हैं ब्रह्मा जी भी कंफ्यूज। राग्यो मोक्षम तथा विक्ष पुरा धाता अपि विस्मृत सत्य लोके तुला बंधवा अतलयोत साधनन अज। ब्रह्मा जी कंफ्यूज हो गए, विचलित हो गए। ब्रह्मा जी हमारी भाषा में सोचे विश्वास ही नहीं किए। इसलिए ब्रह्मा जी को अब ये निर्णय लेना था कि ये बात कहां तक सत्य है। इसलिए सत्य लोके तुला बंधवा, सत्य लोक में ब्रह्मा जी ने एक तुला बांधी। तुला का अर्थ होता है एक कांटा बांधा वजन करने का। जैसे माता जी आ जाती हैं सब्जी मार्केट में सब्जी लेने के लिए, तो वजन करने के लिए जो कांटा होता है, डायमंड मार्केट में भी होता है, तो सब लोग परिचित हैं। ब्रह्मा जी ने एक ऐसा कांटा बांधा और दो पल्लू था उनका, दो पलड़ा था। ब्रह्मा जी ने एक पलड़े में श्रीमद् भागवत कथा को रखा और एक पलड़े में ब्रह्मा जी ने तपस्या को रखा, भागवत कथा का फल और यहां 1000 वर्ष की तपस्या का फल दोनों रखा, परंतु भागवत का वजन बढ़ गया। ब्रह्मा जी ने तपस्या को निकाला, ध्यान को रखा, 1000 वर्ष तक ध्यान का फल रखा, परंतु फिर भी भागवत कथा का फल ज्यादा रहा। ब्रह्मा जी ने यज्ञ का फल रखा, परंतु यज्ञ का फल से भी भागवत का फल ज्यादा रहा। शुद्ध गोस्वामी कहते हैं कि अंत में ब्रह्मा जी ने सारे फल एक पलड़े में रख दिए। जितने भी योग होता है, ध्यान, तपस्या, यज्ञ, जो भी है, ये सब कुछ एक पलड़े में रखा और एक पलड़े में भागवत कथा श्रवण करने का फल रखा। परंतु शुद्ध गोस्वामी कहते हैं लघुनी अन्यानी जातानी, ये सब कुछ रखने के बाद भी भागवत का फल ज्यादा ही रहा। अन्य जितने भी फल थे सब लघुनी, सब कम हो गए। और तब ब्रह्मा जी ने यह निर्णय पास किया कि यह सत्य है, यदि कोई व्यक्ति भागवत कथा सुनता है तो 7 दिन में व्यक्ति भगवान के धाम में जा सकता है। इतना ही नहीं, ब्रह्मा जी ने एक सर्टिफिकेट लिखकर दे दिया। सर्टिफिकेट में क्या लिखा है? मेनि रे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलो पठना श्रवणा सद्यो वैकुंठ फलदायकम। यदि कोई व्यक्ति कलयुग में श्रीमद् भागवत को पढ़ता है, पठना श्रवणात पाठात, यदि कोई व्यक्ति भागवत में श्रीमद् भागवत को सुनता है और पढ़ता है, तो वैकुंठ फलदायकम, सुनने और पढ़ने से वह वैकुंठ को प्राप्त होता है, सर्टिफाइड हुआ है। तो भक्तों, ब्रह्मा जी का सर्टिफिकेट है, शुद्ध गोस्वामी का समर्थन है, वेद व्यास जी लिख लिख कर थक गए, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं और सभी ऋषि मुनि आचार्यों ने इसे स्वीकार किया है, ब्रह्मा जी इसकी सराहना करते हैं, तो फिर हमें क्यों नहीं सुनना चाहिए? तो इस प्रकार से ये भागवत अद्भुत है। और इसके बाद और एक कथा सुनाते हैं कि एक समय की बात, ब्रह्मा जी के 4 पुत्र सनक सनातन इत्यादि बद्री का आश्रम में बद्रीनाथ में विचरण कर रहे थे। उसी समय नारद मुनि दौड़ते दौड़ते बहुत चिंतित थे, बहुत व्यस्त थे, बहुत टेंशन में थे, और उसी के सामने यह सनकादिकों का बेटा हुआ भेंट हुई। सनकादिकों ने नारद मुनि को पूछा कि कथम ब्रह्मन दीनम मुख कुतस चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्य ते कुत्र कुतस चागर्मनम तव। नारद मुनि, किसी धनी व्यक्ति का पैसा कोई लेकर उठ गया हो और उस धनी व्यक्ति की जो हालत होती है ऐसी हालत आपकी क्यों हो गई? संस्कृत का अनुवाद यही हो रहा है, किसी धनी व्यक्ति का धन चला गया हो और वो धनी व्यक्ति की जो स्थिति हो जाती है ऐसी स्थिति आपकी कैसी, क्योंकि आप तो ब्रह्मचारी हो, आपको तो धन से कोई लेना देना नहीं है, तो फिर आप इतने टेंशन में क्यों हो, इतने चिंतित क्यों हो? नारद जी ने कहा कि वास्तव में मैं चिंतित हूं और मैं आप ही को ढूंढ रहा था, क्या हुआ क्या यह बताइए। तब नारद मुनि अपना इतिहास बताते हैं कि हे ब्रह्मा जी के पुत्रों, अहम तुम पृथ्वीम या तो ज्ञातवा सर्वोत्तम मा इति। मैं चिंतित इसलिए हूं क्योंकि मैंने एक बार सोचा कि मैं पृथ्वी पर जाऊंगा और मैं एक बार पृथ्वी पर आया, पृथ्वी पर विचरण किया तो मैं टेंशन में आ गया। भक्तों, इस पृथ्वी पर नारद मुनि जैसे एक बार पृथ्वी पर आ जाते हैं तो वे इतने चिंतित हो जाते हैं। हम लोगों को तो साल भर जीवन भर यहीं पर रहना है, कितने टेंशन में रहेंगे। हम तुम पृथ्वी या तो, मैं पृथ्वी में आया इसलिए चिंतित हूं, परंतु क्या हुआ यहां आकर? नारद मुनि ने कहा कि मैं इस पृथ्वी पर आया, आकर इस पृथ्वी को देखा कि पृथ्वी की प्रथम संध्या में, पृथ्वी के पहले कलयुग के प्रथम दिन में इतना घोर कलयुग आ गया है। घोर कलयुग का वर्णन करते हैं, सत्यम नास्ति तपो शोचम। इस कलयुग में न तो कोई सत्य बोलता है, न तो कोई तपस्वी है, न तो कोई पवित्र है। दया दानम न विद्यते, और दया और दान करने में तो कोई सोचता ही नहीं है। दया और दान नाम की कोई वस्तु ही नहीं है कलयुग में। यदि कोई दो लोग आपस में झगड़ रहे हो तो तीसरा व्यक्ति आएगा और झगड़ा ज्यादा बढ़ा सकता है, बाकी छुड़ा नहीं सकता है। दया किसी में नहीं है। दया दानम न विद्यते। उदरम भणी तो जीवा वरा का कुट वाशिना। सब लोग अपना पेट पालने में पड़े हैं, सब लोग अपने बिजनेस में धंधे में पड़े हुए हैं, और आज का बिजनेस दूसरे को मारे बिना व्यक्ति कोई आगे नहीं बढ़ सकता। एक संत बहुत सुंदर लिखते हैं, आज आपको आगे बढ़ना है तो दूसरे के सिर पर पांव रखना ही होगा। जब तक दूसरे के सिर पर पांव रखकर नहीं चलोगे तब तक आगे भी नहीं बढ़ सकते। तो संसार की स्थिति बहुत गंभीर है, संसार में सब लोग पाप करने लगे हैं, पापी हो चुके हैं, सत्य भाषण नहीं करते हैं। कन्या विक्रिणियो लोभात, लोग पैसे के लोभ से अपनी पुत्री को बेच देते हैं और अपने पुत्र को भी बेचते हैं दहेज लेकर। इस प्रकार से अनेक प्रकार के पाप यहां पर चल रहे हैं। मांसाहार बढ़ गया है, व्यभिचार बढ़ गया है, सब लोग नशा करने लगे हैं। और इस प्रकार से जब मैं घूमते 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 वृंदावन में पहुंचा तो वृंदावन में मैंने एक स्त्री को देखा, बहुत जवान स्त्री थी, 16 साल की कन्या के समान थी, परंतु वह स्त्री दो बूढ़ों के बीच में बैठकर रो रही थी। मैं जब वहां करीब गया तो स्त्री ने मुझे बुलाया और कहा कि भो भो साधु रक्षणम नत्वा, हे साधु, हे नारद जी, आप मेरी रक्षा कर, क्योंकि आप नारद जी हैं, मैं जानती हूं। नारद जी ने कहा, परंतु हुआ क्या, ये कौन आपके पिताजी हैं, चाचा जी हैं? वो स्त्री ने कहा, नहीं नहीं, मैं साक्षात भक्ति हूं। साक्षात भक्ति महारानी का मूर्तिमान स्वरूप था, जैसे गंगा एक नदी है परंतु उनका एक मूर्तिमान स्वरूप है, जिन्होंने शांतनु के साथ विवाह किया था। वैसे ही भक्ति रानी का भी एक मूर्तिमान स्वरूप है। कहा कि ये दोनों जो यहाँ पर लेटे हुए हैं, मूर्छित हुए हैं, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। नारद मुनि ने कहा कि आप इतने जवान और आपके पुत्र इतने बूढ़े, ये कैसे हुआ? तब भक्ति महारानी कहती हैं, द्रविड़े उत्पन्ना साहम। नारद जी क्या बताऊं, द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ। द्रविड़ देश में सब बहुत लोग भक्ति करते हैं, वहां मेरा जन्म हुआ। वृद्धिम कर्णाटके गता, और फिर घूमते घूमते जब मैं कर्नाटक की ओर गई तो मेरी वृद्धि हुई, मुझे और बढ़ाया। परंतु क्वचित क्वचित महाराष्ट्र में पहुंची तो थोड़ी डाउन हो गई। महाराष्ट्र वालों ने मुझे स्वीकार नहीं किया। द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, सब लोग मेरे नाम का गुंजन करते हैं। कर्नाटक में मेरी वृद्धि हुई, महाराष्ट्र में गई तो बहुत कम लोग स्वीकार करते थे। परंतु गुजरात में जब गई, महाराष्ट्र में जिससे जब गुजरात में पांव रखा तो गुर्जने जीर्ण ताम याद, गुजरात वालों ने मेरे पांव काट दिए। गुजरात में भक्ति महारानी बिल्कुल सूख गई। अब देखिए, दक्षिण में भक्ति बहुत शुद्ध चल रही है, हमारे गुजरात में भी भक्त संत हैं, परंतु शुद्ध भक्त की संख्या बहुत कम है। एक संत हमारे एक प्रभु जी तो बहुत सुंदर कहते हैं, यदि किसी का धंधा बिजनेस न चल रहा हो, पैसे न कमा रहे हो, तो साधु का वेश लेकर गुजरात में किसी गांव में जाकर बैठ जाओ, आपको गुरु मानकर पूजेंगे और कुछ दिन के बाद आपको भगवान बना देंगे। अंधश्रद्धा, श्रद्धा है, लोग मानते भी हैं, परंतु गलत जगह पर मुड़ी हुई है। मैं नहीं कह रहा हूं, यहां साक्षात भक्ति महारानी कहती हैं, गुजरे जीर्ण ताम गता, गुजरात में मैं बिल्कुल बूढ़ी हो गई। और ये ज्ञान और वैराग्य, और जब गुजरात से चलती हुई यहां वृंदावन में आई तो मैं तो जवान हो गई यमुना जी का स्पर्श करके, परंतु ये मेरे जो पुत्र है ज्ञान और वैराग्य, ये तो बूढ़े के बूढ़े ही रहे। हे नारद जी, अब आप मेरे पुत्र का कुछ कीजिए। नारद जी ने कहा, मैं क्या करूं? नारद जी ने सोचा, हाँ, वेदों के मंत्र यदि इसके कान में बोले जाए तो ये दोनों खड़े हो सकते हैं। नारद मुनि ने वेदों के मंत्र का पाठ किया, परंतु खड़े होने की बात दूर रही, मूर्छा से हिले भी नहीं। तब नारद जी ने भगवत गीता के 700 श्लोक का पाठ किया, भागवत में आया है। भगवत गीता का श्लोक पाठ करने पर भी ये लोग नहीं हिले, अब क्या करें? नारद मुनि के पास जितना भी चाबी था सब घुमा दिया। तब नारद मुनि बहुत प्रयास किए, कुछ नहीं हुआ। तब आकाशवाणी हुई कि ये भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य तब ही जवान हो सकते हैं जब सत पुरुषों के द्वारा सत कर्म कराया जाए। इतना कह के आकाशवाणी बंद हो गई। अब नारद मुनि के मन में प्रश्न उठा, कैसा सत कार्य कौन सा है जिससे मैं ज्ञान और वैराग्य को खड़ा कर सकूं? नारद मुनि चिंतित थे और इसी चिंता में घूम रहे हैं, यह सत कार्य कौन सा है, सत कार्य कौन सा है। तो नारद मुनि सत कार्य कौन सा है यह जानने के लिए बद्री का आश्रम में घूम रहे थे, और घूमते 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 ये ब्रह्मा जी के चार पुत्र सनक इत्यादि से मिले। अब नारद मुनि ने ब्रह्मा जी के पुत्र को कहा, आप ही बताइए कि सत कार्य क्या है जिससे भक्ति महारानी के ये दोनों पुत्र खड़े हो जाए। तो बताइए, इस संसार में सबसे बड़ा सत कार्य क्या है जिससे भक्ति महारानी के पुत्र खड़े हो जाए? तो ये सत कार्य क्या है, इसकी कथा हम कल से श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सत्कार्य को जानने के लिए, सत्कार्य को करने के लिए आप सब कल पधारिए और अपने जीवन को उज्ज्वल कीजिए। हरे कृष्णा।